नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्म कुमारी की इस विशेष प्रस्तुति जिसका नाम है बी द चेंज सीरीज। ब्रह्म कुमारी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आप इस प्रोग्राम को लाइव देखते हैं और इस प्रोग्राम के जरिए आप लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, जहां पर आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिछले कई दिनों से ये बदलाव का समय गुजरा है और जैसा ये समय आज भी चल रहा है, इसमें हम सब लोग अपने आप को ढालने की, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बदलाव में आपके मतदान बनने की प्रमुख कुमारी कर रही है। तो चलिए इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और आज की बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप दोस्त हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे या यूट्यूब पर जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर आप टाइपिंग कर सकते हैं और आपके सवालों को हम भी दीदी से पूछेंगे। आज हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं जो अनेकों वर्षों से ब्रह्म कुमारीज के साथ जुड़े हैं और अनेकों दशकों से ब्रह्म कुमारीज ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश में हिस्सेदार बने हैं। हजारों लोगों ने उनके मार्गदर्शन में जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया है। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी जी हैं जो धमतरी से हमारे साथ जुड़ी हैं। दीदी जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में।
आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अति प्रिय, अति स्नेही हमारे श्रीनिधि भाई और रोहित भाई जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया और आप जिस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं कई दिनों से, बहुत ही सराहनीय है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करता हूँ, कुछ सवाल जो हमारे दोस्तों ने कल पूछे थे उससे मैं शुरुआत करता हूँ। ये भी बदलाव का दौर है। इस दौर में हम हर कोई कुछ न कुछ सफल प्रयास कर रहे हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन अपने लाइफ में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो एडिक्शन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग तंबाकू से, कुछ लोग अल्कोहल से, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के एडिक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही ये समय आया है, हम में से बहुत सारे दोस्तों ने देखा है कि हम लोगों को ये प्रेशराइज करने लगे हैं कि देखो अब वक्त भी ऐसे बदलाव का आया है, तुम अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दो। तो ऐसे में जो लोग एडिक्शन के शिकार हैं वो लोग अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि भाई ये बात अच्छी है कि हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो एडिक्शन से फ्री तो हो जाएं, बट उनके ऊपर हम प्रेशर नहीं बिल्ड करें, या फिर उनके इस सकारात्मक परिवर्तन में हम अच्छी तरीके से कैसे भागीदार बने, बजाय इसके कि हम उनको देखो छोड़ो 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 ये कहने के बजाय, कैसे हम कारगर तरीके से उनके मददगार बन सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं।
देखो श्रीनिधि भाई, बदलाव तो संसार का नियम है, इसे तो हमें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि समय प्रति समय संसार में परिवर्तन आते हैं और आते ही रहेंगे। समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, समय में बहुत सारे उतार और चढ़ाव भी आते हैं। और ऐसे समय में जब आज का जो दौर चल रहा है बदलाव का, और लॉकडाउन हुआ, लोग जब घर में रहे, तो जिनको ये आदतें थी, नशे की आदतें थी, शराब की आदतें थी, अब सारी बंद हो गई, दुकानों में जा नहीं सकते हैं, तो उनके अंदर जो आदत थी ना, तो उनको अंदर से वो प्रेरित कर रही थी कि हमें कहीं से कोई चीज मिल जाए। लेकिन जब वो चीज नहीं मिल रही थी तो कई डिस्टर्ब भी हो रहे थे, अंदर से उनको लग रहा था कि हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, हमारी ये आदतों की चीजें हैं, ये हमको नहीं मिल पा रही। तो उनके अंदर जो परिवर्तन आ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से चाहते भी थे कि हम परिवर्तन लाएं, लेकिन ये परिवर्तन आएगा कैसे? आप सोचिए कि ये चीजें जल्दी छूटने वाली तो नहीं है, तो अब उनको प्राप्त भी नहीं हो रही है। ऐसे समय में उन आत्माओं को हमें सकारात्मक चिंतन देने की बहुत बहुत आवश्यकता है, परंतु घरों में तो मिलती नहीं, और हरेक के पास ऐसे साधन भी नहीं होते हैं कि चलो हम आध्यात्म से जुड़ जाएं, या हम कोई अच्छे अच्छी किताबें पढ़ लें, या अच्छा हमको संग मिल जाए, क्योंकि ऐसे समय तो कोई संग भी नहीं मिल रहा था उनको कि जो उनको अच्छी बातें बताएं। तो ऐसे समय में सबसे अच्छा उपाय तो यही था कि वो कुछ न कुछ आध्यात्म की बातों से अपने आप को जोड़ें, क्योंकि नशे की आदत तो ऐसी होती है कि वो छुटती तो नहीं है, और उन्हें हम कहें कि आप छोड़ दो तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दो चार दिन की बात तो होती नहीं। तो जब व्यक्ति को एक अच्छी चीज मिले तो वो ऐसी गलत चीजों को छोड़ने के लिए साहस कर लेता है। हमने ये अनुभव से देखा है कि ऐसे समय में जब लोगों को ये चीज नहीं मिल रही थी तो उनको बेचैनी हो रही थी, और बेचैनी की हालत में वो घर में तनाव पैदा कर रहे थे, परिवार के अंदर तनाव हो रहा था, उसके कारण घर के लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे। तो घर के लोगों को लगता था कि आज हमको ऐसी चीज की जरूरत है कि जो इनकी आदतों को खत्म कर सके, लेकिन वो भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि बाहर वो जा नहीं सक रहे थे। तो वास्तव में जो टीवी चैनल के माध्यम से जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा सुनाई जा रही थी, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही थी, तो कई लोगों ने हमको अनुभव सुनाया कि दीदी इस दौरान हम क्या करते जब हम घर में बैठे थे। तो हमारे घर के लोगों ने ये ऐसा मतलब पीस ऑफ माइंड चैनल लगाया, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी आपके यहाँ से जो भाई बहनों की क्लासेस आ रही थी, तो घर के लोगों ने अनुभव बताया कि इनकी आदतों में परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन के कारण उनको लगने लगा कि सच में हमारे हमने कौन कौन सी आदतों को पाल रखा था अपने जीवन में, और अब ये जब चीज मिल नहीं रही है, तो जब मिल नहीं रही है तो बेचैनी हो रही है, तो ऐसे समय में हमारे लिए ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से पीस ऑफ माइंड के माध्यम से हमको बहुत अच्छी चीज मिली कि सचमुच हम इसके आदि हो चुके हैं। लेकिन आज ऐसा परिवर्तन का दौर आया कि जब हमें ये चीज नहीं मिल रही है तो इस आध्यात्मिक ज्ञान ने या बहुत अच्छी अच्छी बातों ने हमारे इन आदतों को हमसे छुटकारा दिलाने में बड़ी मदद की। ऐसा अनुभव कई लोगों का आया, और उससे हमको जान करके खुशी हुई कि आध्यात्मिक ज्ञान कितना जरूरी है कि मनुष्य के जीवन का परिवर्तन हो सकता है जब सकारात्मक चिंतन आता है। जब हम उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार न करें कि देखो आप लोग तो ये आदत के लाचार हो गए हो, अब तो नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, कई बार हम उनके ऊपर कमेंट्स भी कर देते हैं कि आप क्या करेंगे, आपको तो ये आदत बन गई है। लेकिन नहीं, ऐसे समय में हमारे अंदर उन लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनके साथ प्रेम का व्यवहार होना चाहिए जिसके कारण वो अच्छी चीज को ग्रहण कर सके। जब उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत अच्छा होता है कि चलो इनको ये आदत तो हो गई थी लेकिन आज इन्होंने अपनी आदतों में परिवर्तन किया, और ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि उनके अंदर भी लग रहा है कि सचमुच ऐसी चीजों को तो हमें छोड़ देना चाहिए जो चीज हमें प्राप्त ही नहीं हो रही। आपने देखा होगा ऐसे समय में जब लोग इतना मांसाहार कर रहे थे और लोगों को पता चला कि नहीं ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके कारण भी हमारे अंदर ऐसा वायरस आ सकता है, तो लोगों के अंदर भय हुआ। कुछ लोगों ने तो बड़ा अच्छा कमेंट्स भी किया, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ लोग बोलने लगे दीदी क्या सतयुग आ रहा है, मैंने लोगों के अंदर ये लगने लगा क्या सतयुग आ रहा है, क्योंकि सतयुग में सब चीजें नहीं होंगी और आज ये चीज लोगों को नहीं मिल रही है तो सचमुच अब लोगों की आदतों में परिवर्तन आ रहा है, और वो हम देख भी रहे हैं। जो भाई बहने दिखे हैं और उनके घर के लोग जो ज्ञान में भी नहीं चलते, उनके परिवार में जो आदतें थी उनके द्वारा भी हमको अनुभव सुनने को मिला कि नहीं, हमारे घर के जो लोग इसके आदि थे आज उनके अंदर बहुत परिवर्तन आया दीदी, और वो लोग भी सोच रहे हैं कि कहां हमको ये गलत लत लग गई थी और आज हमको ये सोचने समझने का मौका मिला और ये सकारात्मक उनके अंदर परिवर्तन शुरू हुआ। तो इसमें उनको कहना नहीं पड़ा कि आप छोड़ दो, प्रेशर देना नहीं पड़ा कि आप, क्योंकि उनके सामने तो मजबूरी ही थी क्योंकि वो चीज मिल भी नहीं रही थी, तो उन्होंने इस चीज को छोड़ने के लिए बहुत मेहनत नहीं की, लेकिन बहुत अच्छा उनको टीवी के माध्यम से बहुत अच्छी ज्ञान की जानकारी मिली, उनको इसके नुकसान का भी ज्ञान मिला कि इसके सेवन करने से नुकसान क्या होता है, कहीं ये हम इन बातों को लेते रहेंगे, ड्रिंक करते रहेंगे तो ये वायरस हमारे अंदर नहीं आ जाए। तो उन लोगों ने सहज ही इसका भी परिवर्तन कर लिया और कई लोगों के अनुभव भी हमारे पास आते रहे।
ये जो बात आपने कही वो बहुत ही अच्छी चीज है कि बहुत सारे लोग ये बदलाव के दौर में अपने अंदर ही परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद ब खुद लोग पॉजिटिविटी के तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। लोग आकर्षित हैं कि भाई हम ये करें क्या, कैसे इसको किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारे साथ हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं, अनन्या जी हमारे साथ जुड़े हैं और अनन्या जी प्रश्न पूछ रहे हैं। ओम शांति दीदी जी, डज पेरेंट्स बैड कर्मा इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स लाइफ, यानी माता पिता के बुरे कर्मों का क्या बच्चों के जीवन पर असर होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं।
अच्छा देखो अरण्या जी, हम आपसे कहते हैं कि माता पिता के कर्मों का बुरा असर तब होता है जब हम उनको देखते हैं कि इन्होंने ऐसा कर्म किया है और हमने इनके घर जन्म लिया है और इसके कारण हमारे संस्कार भी ऐसे हो रहे हैं, तो वो उनको दोषी ठहराना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इनके घर जन्म लिए हैं और इनके संस्कारों का प्रभाव हमारे पर आ रहा है, लोग भी हमको इसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाती हूँ कि एक घर के अंदर दो भाई थे और पिता के संस्कार अच्छे नहीं थे और उनकी माँ को भी वो परेशान करते थे, कई बार तो बहुत शराब पी करके भी आ जाते थे। तो दो भाई थे तो धीरे धीरे वो देखने लगे कि उनके कारण उनको अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल रही है, उनको जो चीज आवश्यकता की है वो भी नहीं मिल रही है, घर में शांति भी नहीं है और उनके संस्कार बिगड़ने के बहुत चांसेस थे। लेकिन थोड़े बड़े हुए तो एक जो भाई था वो बहुत अच्छे संस्कार को धारण कर लिया, बहुत अच्छा उसने कहीं से भी सहयोग लेकर के पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो बहुत अच्छी पोस्ट पर चला गया। लेकिन दूसरा भाई जो था वो पिता के संस्कारों को धारण करता गया, उनको देखता गया, देखते तो दोनों ही थे बचपन से। तो किसी ने उनके भाई से एक से पूछा कि आपके पिता और माता के संस्कार अच्छे नहीं थे और उनके कारण आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, आप जो चाहते थे वो भी आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे बन गए, आपने पढ़ लिख लिया, और एक भाई है जो नहीं पढ़ा और वो अपने पिता के संस्कारों अनुसार चल पड़ा। तो उस छोटे भाई ने कहा कि मैंने उससे एक पॉजिटिव बातें ली। क्या पॉजिटिव लिया? कि मेरे माता पिता के संस्कार या पिता के संस्कार अच्छे नहीं होने के कारण मेरी माँ को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा, तो मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। उसने एक पॉजिटिव बात ली। लेकिन दूसरे भाई ने क्या उठाया? मेरे माता पिता के संस्कार ऐसे हैं, मेरे पिता के संस्कार ऐसे होने, तो मैं कहां से सीखूंगा, मैं तो इनको बचपन से देखता हूं, जब मैं बचपन से इनको देख रहा हूं तो मेरे संस्कार तो वैसे ही होने चाहिए, मैं भी यही सोचता हूं कि मेरे पिता जो चीज कर रहे हैं मैं भी वही करता रहूंगा। इस कारण क्या हुआ कि उस बच्चे ने उनके पिता के संस्कारों को धारण किया तो उसकी लाइफ और भी आगे खराब हुई। उसने अपने आप को चेंज नहीं किया और एक भाई ने चेंज कर लिया। तो एक ने पॉजिटिव बात ली और एक ने नेगेटिव ली। थे तो दोनों ही एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप के बच्चे, और उसके कारण एक बच्चे ने अपने संस्कार का परिवर्तन बहुत अच्छा किया। उसका कारण ये था कि जब वो आसपास के अच्छे लोगों को देखते थे तो एक भाई दूसरों के संस्कारों को और अच्छी आदतों को देखकर कहता था मुझे भी ऐसा जीवन बनाना है, भले आज हमारे माता पिता ने हमको इतनी अच्छी परवरिश नहीं दी तो क्या हुआ, हम समाज को तो देख रहे हैं ना, समाज में अच्छे लोग भी हैं। जब समाज में अच्छे लोग हैं तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। अपने माता पिता के कर्मों का फल यदि हमें मिला है तो हो सकता है पूर्व जन्म में भी हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे इसके कारण हम इनके घर जन्म लिए, लेकिन क्या हम उसी परिपाटी को लेकर चलते रहे, तो क्यों ना हम अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। और उन्होंने परिवर्तन किया। तो ऐसा होता है कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हमें तो ऐसे ही घर में जन्म लिए हैं तो हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा, लेकिन नहीं, एक बहुत अच्छी सोच अपने अंदर समाज को की अच्छाई को देख करके हम ला सकते हैं, तो हम उस चीज को बदल करके अपने नए जीवन की हम शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम अपने माता पिता को ही पूरे समय दोषी नहीं ठहराएंगे। तो कई बच्चे अच्छा अनुसरण करते हैं, अच्छा संग अच्छा मिल जाता है उनको, स्कूल में जाते हैं, वो अच्छे दोस्त के साथ रहते हैं, तो अच्छा फ्रेंड होना भी तो बहुत अच्छी किस्मत की बात होती है ना, जिसके कारण वो जीवन में एक नया मोड़ ले आते हैं। और जब वो जीवन में नया मोड़ आता है उनके जीवन में, तो वो देखते हैं कि नहीं, हमने उस बात को पीछे रख दिया और आज वो माता पिता भी हमें देख करके गौरवान्वित होते हैं कि हमारे बच्चों ने अब अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लिया, अपने संस्कारों को अच्छा कर लिया। तो इस स्थान पर हमको क्या करना चाहिए, हमें उन बातों को देखते हुए भी न देखते अपने अच्छे संस्कारों को हमें इमर्ज करना चाहिए। तो ये तो अच्छे संग से होता है, और कहते हैं ना कई समय तक वो पुण्य कर्म ऐसा होता है कि जिसके कारण वो उदय भी होता है, पाप कर्मों का फल कम होता है वो घटते जाता है, और पुण्य कर्म उदय होते हैं तो उसके कारण उन बच्चों के संस्कार आगे के लिए अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब बातें जी
ये जो आप बात कह रहे हैं कि अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो उसकी वजह से बच्चों पे असर तो नहीं होता, मगर अच्छे कर्म करने से बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, बच्चे अच्छी चीजें सीखने लगते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, और मैं सोचता हूँ ये इसी प्रेरणा से अगर हम काम करते रहे तो शायद हम इस चीज को और बेहतर समझ सकते हैं और हम अपना काम अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इस लॉकडाउन में नई नई चीजें कर रहे हैं, मेडिटेशन योगा इत्यादि कर रहे हैं। उनमें से एक दोस्त हैं, अर्चना नाम है इनका, और ये प्रश्न पूछते हैं। अर्चना जी का प्रश्न है कि मैं पहले 4 बजे उठती थी लेकिन अब कितना करूं, नींद बहुत आ रही है, क्या करूं, ये पूछते हैं। तो सुबह उठने के बारे में ये प्रश्न है, तो आप इन्हें गाइड करें प्लीज।
जी अर्चना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही ना, क्योंकि देखो आप कई दिनों से 4 बजे उठते थे, धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि आपकी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा। आप थोड़ा वाच करना है ना, मेरी बड़ी आपके लिए शुभ भावना है कि आप चाहते हैं कि मैं सुबह उठूं और नहीं उठ पा रही हैं, तो अब आप क्या कीजिए, आप अपनी दिनचर्या को चेक कीजिए कि मेरी दिनचर्या में मैं किस प्रकार की बातें देखती हूँ, चाहे सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, टीवी पर देख रही हूँ, या मैं व्हाट्सएप पर क्या देख रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं और वो कहीं ना कहीं आपको दुनियावी बातों की बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं, तो क्या होता है, जैसा हम सुनते हैं ना, धीरे धीरे वो हमारी सोच में परिवर्तन हो जाता है, और सोच हमें क्या करती है, रात जागरण कराती है। कई बारी हम रात तक जागते हैं, जब आप रात तक जागती होंगी कई चीजें आपको देखने में भी आती होगी, तो वो रात का जो असर है वो सवेरे उसका प्रभाव दिखाई देता है और कई बारी हमको नींद आने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको यही बात की सलाह दूंगी कि आप क्या कीजिए, सवेरे उठने के लिए आप दिन में बहुत अच्छा साहित्य पढ़िए, आध्यात्म का साहित्य पढ़िए, और जो आप पढ़ते जाएंगे और रोज रात को आप जैसे कि ईश्वर के सामने अपने आप को बिठाकर या अपना पूरे दिनचर्या को रात को आप सोचिए कि मैं एकदम हल्की हो जाती हूँ, जैसे मैं ईश्वर को सब कुछ सौंप देती हूँ और सौंप करके मैं बिल्कुल हल्की हो जाती हूँ और मैं प्रेयर करती हूँ कि मैं सवेरे जल्दी उठ जाऊंगी। तो जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उसको सुन लेता है और वो सुन लेता है, वो अंदर इस चीज को ले लेता है, और जैसे ही 4 बजे का टाइम होगा ना, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को टाइम दे रखा कि मुझे इतने बजे उठना है, और जैसे ही सुबह 4 बजेगा और आपकी नींद खुल जाएगी। इसके लिए आपको अपने सारे दिन की दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं और रात तक जाग रहे हैं, व्हाट्सएप पे आपकी बातें चल रही है, तो आप सवेरे जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसके लिए हमें सुबह के को उठने के लिए अपनी रात को अच्छा बनाना होगा। मैं तो आपको सलाह दूंगी क्योंकि आप 10 बजे सो जाइए। देखो हम लोग भी सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं, लेकिन हमने अपना नियम बनाया है कि रात को हम 10 बजे अवश्य सोएं और अपने माइंड को एकदम हल्का कर देते हैं कि किसी भी प्रकार का बोझ हमारे ऊपर नहीं रहता। जब हम हल्के होंगे तो हम सवेरे बहुत अच्छे से उठ जाएंगे और हमारी दिनचर्या बिल्कुल एक रस हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आप ऐसा कीजिएगा।
मैं समझता हूँ कि ये जो आपने अभी अभी अभ्यास बताया कि दिनचर्या ठीक करना, सुबह ठीक करने के लिए रात्रि समय पर सोना, इसके बारे में आपने बताया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही फायदे वाली बात है। अगला प्रश्न हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं, इनका नाम है निरुपमा जी, और निरुपमा जी प्रश्न पूछते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क दैट वन वेन वन मेक्स मिस्टेक लेटर ही और शी रियलाइजेस हर मिस्टेक एट दैट टाइम हाउ टू एक्सेप्ट वन सेल्फ विद बिलीफ दैट इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स। निरुपमा जी का प्रश्न बहुत लोगों के साथ मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है उस समय तो वो रियलाइज नहीं करता, बट थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है कि उसने गलती की है। तो ऐसे समय पर हम कैसे ये मान लें, ये कैसे अपने आप को विश्वास दिलाएं कि गलती करना ठीक है, कि हो जाती है गलतियां, ये बिलीफ सिस्टम कैसे अपने अंदर डेवलप करें।
जी निरुपमा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये मुझे खुशी हुई कि देखो आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। कई बारी हम गलती करके किसी को बता नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर जैसे कि हमको घुटन होती है, लेकिन आपने ये जो प्रश्न किया है ये आपके द्वारा कई लोगों को इसका उत्तर मिलने वाला है। देखो जैसे बच्चा छोटा होता है वो गिर जाता है या कोई भूल कर देता है तो हम उसको क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप फिर से उठो, फिर से दौड़ो, फिर से अच्छा कार्य करो। तो जैसे हम एक बच्चे के प्रति बड़ी शुभ भावना रखते हैं और उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, तो छोटी सी बात है, ये भूल कोई भूल नहीं होती है, आप तो इसको भूल ही जाइए। तो वास्तव में अगर हमसे कोई गलती हो गई और बार बार हम फेल करते हैं, बार बार हम पश्चाताप करते हैं, तो हम कहाँ रह गए, हम वहीं तक रह गए, बल्कि हम 2 कदम पीछे चलना शुरू कर देंगे। ये तो कोई हमारे जीवन का हल नहीं है, न ये हमारे कोई उन्नति का मार्ग है। मनुष्य ही है, उससे कोई भूल तो होगी ही, और भूल करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक व्यक्ति भूल नहीं करता उसको आगे की बहुत अच्छी राह भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये नियम है, जब व्यक्ति ठोकर खाता है तो कहते ना ठाकुर बन जाता है। तो कई बार हमारे अंदर हमसे कोई गलती हो भी गई तो हम उस चीज को बिंदु लगा दें ना, हमें ये सिखाया जाता है कि आप क्या कीजिए, उसको बिंदु लगाइए, पूर्ण विराम लगा दीजिए। जब आप उसको पूर्ण विराम लगा देंगे तो आगे के लिए आपका मार्ग बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके सोचने की प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप पश्चाताप की फीलिंग में रहेंगे ना तब तक आप अच्छाई नहीं सोच सकते, आगे के लिए अच्छी बात नहीं सोच पाएंगे, तो आपकी प्लानिंग, आपके अंदर बहुत अच्छी जो चीज होगी वो ब्रेक हो जाएगी। मेरे पास ऐसे कई छोटे कुमार भी आते हैं और वो लोग भी मुझसे ये बात की शेयरिंग अवश्य करते हैं कि दीदी हमारे जीवन में हमसे भूल हो गई, अब हमको बहुत पश्चाताप होता है, हम क्या करें। तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि हो गई ना, वो हो गई, अब आप उसको पीछे मुड़कर मत देखिए, वो भूल जाइए, क्योंकि हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमें बहुत अच्छी अच्छी मंजिलें दिखाई देगी, अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए जैसे एक बालक ने, जैसे उदाहरण सुनाती हूँ, एक ट्रेन, गलत ट्रेन में बैठ गया, अब गलत ट्रेन में बैठ गया, उसको बाद में पता चला कि मैं तो गलत ट्रेन में बैठ गया, मुझे तो जाना था बॉम्बे, मैं कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गया। अब वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, उसके सामने एक महिला थी, उसने कहा बालक रो क्यों रहा है, रो रहा है। तब उसको पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, तो बोले मैं गलत ट्रेन में बैठ गया, मुझे बॉम्बे जाना था, मैं कलकत्ता वाली ट्रेन में बैठ गया और मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं। तब उस महिला ने कहा तुम इसी आगे स्टेशन पे उतरो, रोने से कुछ नहीं होगा, पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अभी उतरना है और इधर से दूसरी ट्रेन आएगी उसमें आपको बैठना है। भाव क्या है मेरा कहने का कि अगर हमने कोई गलती की, हम उस पश्चाताप को लेकर लगातार क्यों बैठे रहेंगे? वो तो एक एक्सीडेंट था, हो गया, लेकिन मुझे आगे क्या करना है? मुझे बहुत अच्छी अपने जीवन की प्लानिंग करना है। अगर मुझसे नहीं होता तो मुझे बहुत अच्छे लोगों के, जो हमसे बहुत अच्छे हैं या जिनके पास हमको विश्वास है, क्योंकि बात तो विश्वास वाली होती है कि हम किस पर ट्रस्ट करें, और हम उनसे जाकर के पूछें कि अब मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करते फेल हो जाता है, अगर माँ बाप भी उसको डांट देते कि तुमने अच्छा नहीं पढ़ा, तुम फेल हो गए, तुम तो बुद्धू ही हो, तुम तो ऐसे ही करते हो, तो क्या होगा? बच्चा आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। लेकिन उस बच्चे को कहेंगे, कोई बात नहीं, ये साल बिगड़ा ना, तुम्हारा अगला साल बहुत अच्छा होगा। तो जब उसको ये हम बहुत अच्छी मोटिवेट की बात करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो अपने आप उसके अंदर एक अंदर से ऊर्जा होती कि नहीं, मुझे वास्तव में, मैंने गलती की है लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा, और सबका सपोर्ट मिलता है। ऐसे ही हम अपनी गलती को उसी स्थान पर बताएं। मैं आपको निरुपमा जी ये बोल देती हूँ कि आप अपनी गलतियों को या अपने पश्चाताप की फीलिंग को आप हर एक के लोगों के सामने मत दर्शाइए। हाँ, आपको जहाँ विश्वास है, ये मुझे बहुत अच्छा हिम्मत दे सकते हैं, मुझ में उम्मीद जगा सकते हैं, तो आप बताइए, और नहीं तो मैं आपको एक सलाह दे सकती हूँ। वो सलाह ये दे सकती हूँ कि सबसे अच्छी राह दिखाने वाला वो ईश्वर ही होता है। आप जिस भी ईश्वर को मानती है, आप उसके सामने बैठ जाइए और दिल से आप अपने आप को हल्का कर लीजिए। आपको एक इतनी सुंदर प्रेरणा आएगी और वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो पश्चाताप की बात है वो खत्म हो जाएगी, और आपको एक नई राह मिल जाएगी। और उस राह पर जब आप चल पड़ेंगे तो आप अपने आप को ऐसा अनुभव करेंगे कि वो पिछला जीवन था और इस जीवन में मैं मंजिल छूने की आश में दौड़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, और आपको देख करके लोगों को कभी शक नहीं होगा कि इन्होंने अपने जीवन में गलती की थी। तो हमें उस स्थान पर बताना चाहिए जहां पर हमारा विश्वास हो। कोई हमसे विश्वासघात न कर ले कि हमारी बात को औरों तक पहुंचाए, आप उसी स्थान पर बताएंगे, तो ये मैं आपको सलाह देती हूँ।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अगला प्रश्न हमारे साथ यूट्यूब से सुप्रिया जी जुड़े हैं, और जी। सुप्रिया जी प्रश्न पूछते हैं, दीदी मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो जो नेगेटिव है वही चीजें सामने आती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज हेल्प मी, ऐसा वो कहते हैं।
सुप्रिया जी को मैं बहुत अच्छी बात सुनाने जा रही हूँ कि आप पॉजिटिव ही सोचिए, भले नेगेटिव बातें आ रही है आपके सामने, आने दीजिए। देखो, हमारी शिवानी दीदी जी भी हमेशा एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि आपने अगर बहुत सारे ब्लैक वाले बॉल फेंके हैं, है ना, तो अभी वो लौटेंगे कौन से? ब्लैक वाले ही ना। और आप कहेंगे कि मैंने ब्लैक बॉल फेंके हैं और मैं व्हाइट बॉल शुरू कर दूं, तो क्या व्हाइट आना शुरू हो जाएंगे? नहीं, जब तक वो ब्लैक खत्म नहीं होंगे तब तक व्हाइट नहीं आएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, मैं तो पॉजिटिव सोच रही हूँ, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं, जब तक उनको आना है वो आ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचते रहिए, वो समाप्त होते ही हर चीज आपके सामने पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी। हम अपने आप से कई बार ना उम्मीद हो जाते हैं कि मैंने तो अभी शुरू किया लेकिन ये कैसे इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हर चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, इसमें हमें धैर्यता की बड़ी जरूरत होती है। अगर हमारे जीवन में धैर्यता है तो धैर्यता लाने के लिए भी मैं आपको एक बात कहूं, मेडिटेशन सबसे अच्छा साधन है। मेडिटेशन हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करता है कि उस शक्ति के द्वारा हम उस नेगेटिविटी को कम करना शुरू कर देते हैं। वो आती है और आएंगे भी, नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है कि मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, लेकिन जब हमारे पॉजिटिव संकल्प उनसे हाई लेवल के होना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे 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 नेगेटिव खत्म हो जाते हैं और फिर रह जाते हैं तो केवल पॉजिटिव। भले रिजल्ट हमारे सामने पॉजिटिव का तुरंत पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि मैंने पॉजिटिव कर्म किया है, मैंने पॉजिटिव सोचा है, उसका रिजल्ट मुझे आज नहीं तो कल पॉजिटिव ही आएगा, और आता भी है। इसके लिए हमें थोड़ा धैर्यता रखनी पड़ती है।
जी, एक और दोस्त हमारे प्रश्न पूछते हैं, ये सवाल थोड़ा चिड़चिड़ेपन से जुड़ा हुआ है।
जी, हाँ जी।
उनका नाम है पुरुषोत्तम जी और ये सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो मैं समझता हूँ सिर्फ इनका ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कभी चिड़चिड़ेपन से डील नहीं किया है, वो भी इस लॉकडाउन में चिड़चिड़ेपन को डील करते
गए हैं।
तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, उसको परिवर्तन कैसे ला सकता हूँ, उसमें वो पूछते हैं।
जी पुरुषोत्तम भाई जी, मैं आपसे यही कहूंगी, चिड़चिड़ापन आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो हो गया है ना। आप ऐसा अनुभव करते हैं कि चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो आप ये सोचें कि जैसे देखो कभी कभी अपने अंदर कोई चीज कमी कमजोरी आने लगती है, या कोई खालीपन आने लगता है, या कई बार ऐसा होता है कि अब हम घर में बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सब लोग स्वीकार कर लें, या मैं जैसा कहूं वैसा ही वो मान ले, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसा कहा और आपने ऐसा नहीं किया, मेरी बातों को तो कोई ध्यान ही नहीं देता, मेरी बात को तो कोई मानता ही नहीं, मुझे तो कोई सम्मान देता ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते हमारे अंदर क्या आने लगता है, चिड़चिड़ापन। इसका कारण क्या है, जैसे कि आत्मा अंदर से खाली हो रही है, और खाली होते होते उसके अंदर वो अब शक्ति नहीं रही कि बहुत अच्छा सोचने की या बहुत अच्छा देखने की। कई बारी क्या होता है, घर में रहते रहते पहले तो हमें पता नहीं चलता है, हम सवेरे से उठ करके भाई अपना नाश्ता किया, भोजन किया, ऑफिस चले गए, बाहर चले गए, फिर रात में आए, भोजन किया, सो गए, तो हम इतना हरेक के स्वभाव संस्कार से हम वाकिफ नहीं होते हैं। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है कि हम सब घर में रहते हैं, पूरी फैमिली घर में रहती है। अब जब पूरी फैमिली घर में रहती है तो हरेक के अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है, हरेक की कोई ना कोई बात होती है। अब मैं चाहूं कि मैं जो सोचूं वही होना चाहिए, मैं जो कहूं वही होना चाहिए, या मेरी ही बात को सब लोग मानना चाहिए। और क्या होता है, मैं रियली अब बात को बताऊं, आप बुरा मत मानिएगा, कि धीरे धीरे हम एक दूसरे की कमी कमजोरी देखना शुरू कर देते हैं, और वो कमी कमजोरी देखते देखते क्या होता है, हमारे अंदर उनके प्रति भाव बदल जाता है, और वो जब भाव बदलता है ना तो हमारा प्रेम खत्म होने लगता है। जब प्रेम खत्म होगा तो क्या होगा, अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि कहते ना खाली डिब्बा ज्यादा बचता है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम खाली हो रहे हैं, कुछ तो हमें बहुत अच्छे से मिल नहीं रहा है, घर में रहना है, भोजन करना है ना, और जो भी कार्य है किया, फिर सो गए। लेकिन अब आपको भी आवश्यकता, आपका नाम ही पुरुषोत्तम है ना, बहुत अच्छा नाम है आपका। और हम तो कहते हैं कि वास्तव में पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम तो देवता ही होते हैं, श्री रामचंद्र जी को भी पुरुषोत्तम कहा है। तो आप देखिए कि आप अपने नाम के अनुरूप भी आप बहुत अच्छे हैं। आप एक काम कीजिए, आप हरेक की विशेषता को देखिए कि हरेक के अंदर कोई न कोई ईश्वर ने विशेषता भरी है, और मेरे में भी कोई न कोई विशेषता है। तो ऐसे समय में मैं इस घर परिवार में रहने वाली वो आत्मा हूं जिनके साथ तो मुझे रहना ही, और ये मेरे अपने ही तो लोग हैं। अगर मैं चिड़चिड़ापन अगर करता रहूंगा तो वातावरण कैसा हो जाएगा, वातावरण भी वैसा ही हो जाएगा। इसके लिए आपको एक अभ्यास करना होगा, और वो अभ्यास है आप अपने आप को जाने, और अपने आप को जानने का भाव है कि मैं शरीर नहीं, लेकिन मैं इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, और मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो धर्म है, वह है शांत स्वरूप। देखो शांति हर एक को अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती होगी, है ना, क्योंकि आप खुद महसूस कर रहे हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों हो रहा है, चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको भी शांति प्रिय है, तो जो घर में रहने वाले उनको भी शांति प्रिय है, तो उसके लिए आप स्व का परिवर्तन कीजिए ना। जब तक हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे हम दूसरों को नहीं बदल सकते। कैसे बदलेंगे? जब हम ही अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, हम दूसरों को कहेंगे कि आप ठीक हो जाओ तो हम ठीक हो जाएंगे, आप अच्छा करो तो हम शांत हो जाएंगे। इसके लिए प्रथम कदम आपको अपना बढ़ाना होगा और वो है स्व परिवर्तन। और स्व परिवर्तन के लिए कुछ नहीं करना, आप अपनी सोच का परिवर्तन कीजिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार में भी शांति होगी, मेरे परिवार में प्रेम होगी, मैं प्रेम चाहती हूँ ना, मुझे देना आना चाहिए, क्योंकि मैं जो चीज दूंगी ना वो चीज मुझे मिलेगी। अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए इरिटेट होंगे तो क्या होगा, हम तो खुद ही चिड़चिड़े हो रहे हैं और हमारे साथ जो लोग होंगे वह भी हो जाएंगे। इसलिए आप तो बहुत अच्छी आत्मा है और आप ये अनुभव करना, थोड़े दिन आप अनुभव करके देखिएगा। सवेरे उठ करके आप पहला संकल्प अपने आप को दीजिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की रचना हूँ, मैं ईश्वर के का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर को प्रिय हूँ, तो मेरे संस्कार अच्छे होंगे तो मैं ईश्वर को भी प्रिय हूंगा और मैं इस परिवार को भी प्रिय हूंगा और सबसे पहली बात मैं स्वयं को प्रिय बनूंगा। तो आप ये कर सकते हैं ना, आप जरूर कीजिएगा और ये आप अनुभव करेंगे, ये संकल्प आपके स्वभाव को बदल देगा और इतना सुंदर आपका स्वभाव होगा कि घर के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार सीख जाएंगे। ठीक है ना, कि आप अपने से शुरुआत करेंगे।
कुछ दोस्त हैं जो डर के बारे में अगला सवाल पूछना चाहते हैं।
अजीत
जी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से और ये सवाल पूछते हैं। अजीत जी का प्रश्न है कि डर कैसे जाएगा, और इससे ही मिलता जुलता सवाल चुनेश जी पूछते हैं, वो कहते हैं वर्तमान समय प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कैसे करें, क्योंकि इस समय अधिकांश लोग कोरोना वायरस से भयभीत हैं। तो अजीत जी का और इनका प्रश्न दोनों का एक साथ उत्तर देने की कोशिश।
जी अजीत भाई और चुनेश भाई, है ना, दोनों का प्रश्न एक जैसा ही है और वर्तमान समय के अनुसार आपका प्रश्न लाजिब भी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर भय का वातावरण है और भय का वातावरण होने के कारण अंदर डर भी है। डर किसका, किस बात का है? सबसे पहले चीज जो हम दुनिया की इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, रोज अखबार उठा रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम दुनिया के वायरस के आंकड़े देख रहे हैं और उन आंकड़ों को देखते देखते हमको ऐसा अनुभव होने लगा कि वो चीज हमारे भी करीब आ गई है और हमें अंदर से भय होने लग गया कि कहीं वो चीज मुझे तो नहीं हो जाएगी, कहीं वो चीज किसी से आ तो नहीं जाएगी। तो हमारे अंदर दुनिया के समाचार सुन करके ज्यादा भय उत्पन्न हो रहा है और हमारे अंदर डर का वातावरण बन रहा है, क्योंकि हम लोगों से सुनते ना, देखो फलाने को हो गया, उनके परिवार में ऐसा हो गया, देखो इतने लोगों की डेथ हो गई। लोग भी हमको सुनाते, पता है आपको उनके घर ऐसा हुआ, देखो वो लोग वहां गए थे ना तो वहां जाने के कारण उनको ये वायरस आ गया। और ऐसा करते करते क्या हो रहा है, हम इन्हीं समाचारों को सुनते सुनते अंदर से कमजोर हो रहे, अंदर से कमजोर। ऊपर से तो हम कह रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें काढ़ा लेना है, तो गर्म पानी लेना है, तो नींबू पानी लेना है, लेकिन ये बाहर का हम व्यवस्था कर रहे हैं बाहर की, लेकिन अंदर हम कमजोर हैं। तो अंदर कौन कमजोर हो रहा है? अंदर कमजोर हो रही है आत्मा, आत्मा कमजोर हो रही है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मनोबल को बढ़ाना होगा। अजीत भाई मैं आपसे ही कहूंगी कि आप अपने मनोबल को बढ़ाइए, और मनोबल कैसे बढ़ेगा उसके लिए आप राजयोग मेडिटेशन अवश्य कीजिए, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन सबसे पहले हमें ये बताता है कि हम आत्मा है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, निर्भयता उसका गुण है। आत्मा को किस बात का डर? किस बात का भय? क्योंकि वो शरीर से इतनी अटैच हो गई है और इसलिए उसको अपने शरीर के बीमारी का डर होता है कि कहीं मुझे बीमारी न लग जाए, कहीं मेरे परिवार में न आ जाए। वो अपने परिवार के लिए चिंतित हो जाता है, भयभीत होता है, अपने लिए भयभीत होता है, क्योंकि वो समझता है सारी दुनिया की एक ही प्रॉब्लम है, सारी दुनिया में वायरस चल रहा है और इसलिए ये कहीं भी कहीं से भी आ जाएगा, इसलिए वो भयभीत है। लेकिन भय से मुक्ति का सबसे अच्छा मार्ग है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए जिसमें आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि आप अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। और परमात्मा कौन है? वो सर्वशक्तिवान है, वो सुप्रीम पावर है। और उस सुप्रीम पावर को जब याद करेंगे ना, उससे अपना संबंध जोड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एकाग्रता होगी ना, तो आपकी जो ये मन और बुद्धि है ना, वो इन बातों से हट जाएगी। आपका मन भी वहीं जा रहा है, बुद्धि भी वहीं जा रही है, तो स्वाभाविक है आपको भय लगेगा। जो चीज हम बार बार सोचते हैं ना, वो चीज हमको ऐसा लगने लगता हमारे सामने आ गई। अगर हमें सोचेंगे कि यहाँ भूत है और वो भूत आ रहा है बस, तो उसको क्या होगा? एक सफेद कपड़ा भी भूत दिखाई देगा और वो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। आप इस बात से भूल जाइए कि ये वायरस दुनिया में चल रहा है, हो भी रहा है, रिकवरी भी हो रही है, बहुत कुछ अच्छे हो रहे, लेकिन मैं अपने मनोबल को बढ़ाऊं तो मुझे बीमारी क्यों टच करेगी? हमने अपने आप को शरीर समझ लिया और दुनिया के समाचारों से अपने आप को जोड़ लिया। सुबह उठ करके बस हम यही देखते हैं, यही अखबार पढ़ते हैं, लोगों से भी हमको यही मैसेज आते हैं, हम ये बातें छोड़ दें। और सवेरे उठकर आप बहुत सुंदर चिंतन कीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ। आप अपने आप को संकल्प दीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पर परमात्मा की सुरक्षा का कवच चल रहा है, मैं ईश्वर की छत्र छाया में हूँ, मेरा परिवार बहुत स्वस्थ है, ये पूरी सृष्टि बहुत स्वस्थ है और स्वस्थ हो रही है। ये जो चीज आई है वो चली जाएगी, परंतु मेरा मनोबल गिरना नहीं चाहिए। अगर मनोबल गिरा, कमजोर होगा, तो हम शरीर कितना भी अच्छा रखें वो भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप अपने मनोबल को बढ़ाइए और दुनिया के समाचारों को बार बार मत देखिए। हाँ, थोड़ी बहुत सूचना अच्छी चीज है अपने आप को सावधान करने के लिए, लेकिन आप अपने आप को रोज संकल्प दीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार सुखी है, ये पूरी सृष्टि बहुत स्वस्थ है। आप ये संकल्प लीजिए, आपका भय खत्म हो जाएगा, ठीक है ना?
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। ये जो बात आप कह रहे हैं, हम अक्सर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज सुन लेते हैं, व्हाट्सएप पे हो या सोशल मीडिया पे हो, कहीं पर भी हम एक एक करके उसी चीज को ज्यादा सुनते रहते हैं, असर होता है मन पे।
जी,
और आपने कहा कि हम स्वस्थ चिंतन करें कि भाई बाहर जो हो रहा है सो हो रहा है, बट अपने हिसाब से अंदर की भी तैयारी होनी चाहिए। आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी कही। अगला प्रश्न हमारे एक दोस्त पूछते हैं, नाम है इनका मयूर, और मयूर प्रश्न पूछते हैं कि लॉकडाउन में हम क्या क्रिएटिव कर सकते हैं।
जी,
और ये हमारे एक युवा साथी हैं और जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो लॉकडाउन के समय पे कुछ क्रिएटिव किया जाना चाहिए, तो हम कैसे कुछ चीजें क्रिएटिव कर सकते हैं पूछते हैं।
जी मयूर भाई, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है ना, तो हम ये क्यों समझे कि लॉकडाउन हुआ? मैं तो समझूंगी हमारे लक का उदय हो गया ना, हमारे भाग्य का उदय हो गया। कई बारी हम भागम भाग की जिंदगी में या पढ़ाई में बैठकर कोई नया क्रिएटिव करने का नहीं सोच पाते थे। कई बार हमको लगता था हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो कोर्स की किताब पढ़ रहे हैं, हमको तो वहां जाना है, तो ये हम इसी में लगे रहते थे, तो नया कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ये तो आप सोचिए कि मेरे को बहुत अच्छा समय मिला है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक ऐसे ही युवा कुमार आते हैं और उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है और अभी तो जॉब नहीं लगी है, क्योंकि वो जॉब के लिए बेंगलोर भी गए हुए थे, तो वहां पर भी उन्होंने एक दो जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन उनको थोड़ा जमा नहीं, तो वो वापस आ गए, धमतरी आ गए। लेकिन इस बीच उनको मैंने देखा, उसने इतना अच्छा अपने समय को यूज किया, तो मुझे एक दिन आकर के बता रहा था कि दीदी मैंने गूगल की कितनी चीजें मैंने सीख ली है और मुझे इसका सर्टिफिकेट भी मिल गया है। बोले ये चीज तो मैं नहीं कर पाता था। साथ ही उसने इतने अच्छे गीत तैयार किए और इतना अच्छा उसने केसियो पर और उस पर उसने अपने आप को एंजॉय किया और उसने कई चीज सीखी इस बीच। उसने इस समय को गंवाया नहीं और साथ में अपने भाई को भी उसने बहुत अच्छा अनुभव कराया कि चलो हम भले घर में रहते हैं तो क्या हुआ, हम घर में कई अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। मुझे तो मैं आपको बताऊं कि उसने इतनी अच्छी चॉकलेट की रेसिपी बना करके ले आया, कहता दीदी मैं देखो ये भी सीखा ये भी सीखा, मुझे तो इस दौरान बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। तो मैं मयूर भाई से कहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि ये लॉकडाउन हुआ है तो हम भी अपने मन बुद्धि को ऐसे डल करके बैठ जाएं। नहीं, हमें डल नहीं होना है, हमें ईश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी। और उस देखो उस कुमार ने मेडिटेशन भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सीखा कि उसका योग का चार्ट बहुत अच्छा बना। उसके कारण लगता है कि मेरी बुद्धि इतनी अच्छी प्लानिंग बुद्धि हो गई, तो उसने कई चीजों का इस समय उसने नया नया उसने कोई ना कोई योजना बनाई और बहुत अच्छी चीज बनाई, बहुत अच्छी चीज सीखी, उसको सर्टिफिकेट भी मिला। तो आप अपने समय को गंवाइए मत, ये मत सोचिए कि चार महीना हमारा ऐसा ही चला गया ना, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अभी कुछ नहीं करने को। नहीं, बुद्धि को आप काम दीजिए, बुद्धि बहुत अच्छा आपके लिए रास्ता चुनेगी और भविष्य के लिए आपके लिए एक नई चीज आपके हाथ में आ जाएगी और आप सोचेंगे ये समय मेरे लिए बहुत अच्छा था जो मैंने इस पर रिसर्च अच्छे किए। तो समय को गंवाइए नहीं मयूर भाई, आप बहुत अच्छे अपने समय को बिताइए और नया नया कुछ न कुछ सोचिए, प्लानिंग कीजिए। ठीक है
दीदी, अगला एक प्रश्न है हमारे पास जो मेघा जी पूछते हैं। मेघा सहवाग नाम है इनका और मेघा पूछते हैं, आई ट्राई हार्ड टू करेक्ट सम मिस्टेक्स बट स्टिल मिस्टेक्स होते हैं। बहुत बार वो कहते हैं कि वो कुछ गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं मगर बार बार वही गलतियां होती हैं, और वो कहते हैं कि उस सुप्रीम पावर के पास बैठकर लगता है कि मैं उनकी एनर्जी लेने के लायक नहीं हूं। मेडिटेशन में ये परमात्मा से शक्ति लेकर या भगवान से याद करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करती हैं, बट उनको लगता है कि ईश्वर से शक्ति लेने के वो लायक नहीं है और सेम मिस्टेक्स उनके बार बार रिपीट होते हैं और इसकी वजह से डेली गिल्टी फील होता है उनको। तो वो एडवाइस चाहते हैं कि ऐसे में क्या करें कि वही मिस्टेक्स जो बार बार हो रही हैं उसे कैसे ठीक किया जा सकते हैं और गिल्टी फीलिंग जो है उससे कैसे दूर हो सकते हैं।
प्यारी मेघा बहन, आपका नाम तो मेघा है ना, मेघा का अर्थ ही विशाल होता है, और आप अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाओ क्योंकि परमात्मा तो विशाल है, परमात्मा का हृदय छोटा नहीं है, परमात्मा तो बहुत बहुत विशाल है और उसके हम बच्चे हैं। आपने अगर कोई गलती की है ना तो, और आपने गलती उस ईश्वर को बता दी है या बता दीजिए कि मेरे से ये भूल हुई, आप चलो संकल्प से नहीं बता पा रही है कि आपको लगता है कि वो कैसे सुनेंगे, तो मैं आपको एक विधि बताती हूँ। आप क्या कीजिए, आप इस सुप्रीम पावर के पास बैठिए और कुछ बातें आप उसमें लिखिए, जो आपने गलती की ना उसको आप लिखिए और उसको आप ईश्वर को बताइए कि आप ये पढ़ लीजिए और उसके बाद आप उसको फाड़ कर फेंक दीजिए। परमात्मा विशाल हृदय है, परमात्मा के हम बच्चे हैं, परमात्मा अपने बच्चों की कई गलतियों को माफ करते हैं, परंतु इसके लिए आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। दृढ़ संकल्प जब आप लेंगे ना कि मैंने आज तक जो गलती की सो की, वो पुरानी बातें हो गई, लेकिन ईश्वर के सामने मैं बैठ करके आज ये दृढ़ संकल्प लेती हूं कि वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी और न मैं उसे याद करूंगी। आप उसे ईश्वर को सौंप दीजिए। जैसे देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने माता पिता के साथ चलते हैं, उनके पास कोई बोझ होगा ना तो चाहे वो कितना भी वेट वाला हो अपने माँ बाप को दे देते हैं और फ्री हो जाते हैं, सोचते हमने अपने माता पिता को दे दिया। और इतना फ्री होकर के अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चल पड़ते हैं। उनके अंदर कोई डर नहीं रहता, उनको लगता है हमने अपने माँ बाप को बोझा दे दिया। छोटे बच्चे होते ना, चार गलती करके आते और घर में किसको सुनाते, अपने मम्मी पापा को सुना देते और फ्री हो जाते, आराम से नींद करते, सुबह उठेंगे फिर खेलेंगे। क्या हम भगवान के बच्चे नहीं? और भगवान के बच्चे तो हैं हम, और भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन वो हमें उन कमी कमजोरी को कभी नहीं याद दिलाता, कभी नहीं देखता। आप ये सोचिए कि मैं ईश्वर को ये सब कुछ सौंप कर हल्की हो गई हूं, और दृढ़ संकल्प कीजिए। कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प वास्तव में सफलता का आधार है, परिवर्तन का आधार है। आपका परिवर्तन सहज ही हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा रहमदिल है, वो दयालु है, वो कृपालु है। आप उस परमात्मा को अपने जीवन को सौंप दो कि मैं आपकी हूं, मैं आपकी हूं। वो सहज ही हमको स्वीकार करते हैं और हमको इतनी अच्छी विशालता देते हैं, इतनी अच्छी हमको बुद्धि देते हैं कि हम बहुत अच्छे कार्य करने लग पड़ते हैं, क्योंकि सुप्रीम पावर ही उसका नाम है। जब वो सुप्रीम पावर है, उसके पास इतनी पावर है कि मेरी कमी कमजोरी को सेकंड में भस्म कर देते हैं। देखो, मेडिटेशन में यही करते हैं। हमने सबने भी गलतियां की है, सबके अंदर भूले हुई है, सबसे कोई ना कोई पाप हुआ है। तब तो हम कहते हैं ना ईश्वर को पतित पावन। अब वो सुप्रीम पावर, पतित पावन परमात्मा, उसको जब हम याद करते हैं तो हम अपनी पुरानी बातों को लेकर के बैठेंगे तो उसकी शक्ति का अनुभव नहीं होगा। उसकी शक्ति का अनुभव करने के लिए आप बीती को बीती कर दीजिए और एक बच्चे के रूप में आप बैठिए कि मैं बालक हूं, मैं उसको प्रिय हूं। और बच्चा जैसे कि एक माता पिता की गोद में चला जाता है, हल्का हो जाता है और पिता उसको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो इसी प्रकार जब आप परमात्मा पिता के करीब आएंगे, उस सुप्रीम पावर के पास, तो आप अपनी गलतियों को याद मत कीजिए, पुरानी बातों को याद मत कीजिए, और ये अनुभव कीजिए कि उस परम पिता परमात्मा ने मेरी हर बात को माफ कर दी है और वो मुझे अपनी शक्तियां प्रदान कर रहा है। मैं उसके लायक हूँ, तभी तो उसने मुझे चुना है, तभी तो मैं उसके करीब आ रही हूँ। अगर वो मुझे अपनी शक्ति देना नहीं चाहते तो वो मुझे अपने पास नहीं बुलाते। आप उनके पास आई हैं और आप उनको याद करने बैठ रही हैं, वो अपनी पूरी शक्ति आपको दे रहे हैं। आप अपने बुद्धि को बल्कि उनमें लगा दीजिए। जब मन और बुद्धि उनमें लग जाएगी, आपके अंदर पावर आ जाएगी और आप ये भूल जाइए कि मैंने गलती की है या मैं वैसी आत्मा हूं। नहीं, आज से आप अपने आप को सोचिए, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। ठीक है
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जो आपने उत्तर दिया। मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट अपने आप को दिलाना बहुत जरूरी है कि गलतियां हर किसी से होती हैं और मैं पॉजिटिव हूँ, मैं दिव्य हूँ। ये चीजें अगर हम करते हैं तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। हमारे एक दोस्त ने प्रोग्राम के बारे में कमेंट लिखा है, लीजा सचदेव नाम है इनका, और वो
लीजा
और ये एक सिर्फ फीडबैक है, जो बहुत सारे लोग ऐसे फीडबैक तो देते हैं हमारे दोस्त, मगर मैं सारे फीडबैक्स नहीं पढ़ पाता हूँ। बट एक फीडबैक मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, दीदी लॉकडाउन में ही मैंने राजयोग मेडिटेशन सीखा और ब्रह्मा कुमारी से इंट्रोडक्शन हुआ। इट हैपेंड सो गुड थैंक्स टू माई फ्रेंड हु इंट्रोड्यूस्ड ब्रह्मा कुमारी टू मी, वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि इस लॉकडाउन में ब्रह्मा कुमारी से उनका परिचय हुआ और उसकी वजह से वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और अपने दोस्त का धन्यवाद करती हैं जिन्होंने उनको ब्रह्मा कुमारी से इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू लीजा जी इस पॉजिटिव फीडबैक के लिए। मैं आशा करता हूँ जो आपने ये फीडबैक दिया है, ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, आप उनके बिहाफ पे ये चीज कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूँ दीदी, हालांकि इस जवाब के लिए हमारे पास ज्यादा उत्तर देने के लिए समय नहीं बचेगा, शायद दो मिनट जितना समय बचेगा। मणि यादव हमारे साथ हैं और मणि फेसबुक से जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू फेस अनसक्सेसफुल इन एग्जाम इन पॉजिटिव वे एंड रीस्टार्ट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट with full enthusiasm and positivity. अगर आप एक आध एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो अगले अटेम्प्ट के लिए हम अपने आप को फिर से पॉजिटिविटी से और एंथुजियाज्म से कैसे भरें और फिर से रिस्टार्ट कैसे करें अपने एफर्ट को, ऐसा मणि पूछते हैं।
जी मणि जी से मैं यही कहूंगी कि चलो आपने पिछले एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन आप ये सोचिए कि अब आप जो एग्जाम देंगे और आप जो आंसर अपने बुद्धि में रखेंगे, आप जो पढ़ाई करेंगे ना, आप मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन करने के बाद आप वो इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे कि आप अगले एग्जाम में इतने अच्छे नंबरों से आएंगे कि आपको कल्पना भी नहीं होगी। इतने अच्छे आपके नंबर आएंगे, आप ये सोचिए कि मैंने जो भी पढ़ाई की है वही एग्जाम में आएंगे, आप यही थॉट क्रिएट कीजिए। जब आपके थॉट होंगे ना कि मैं जो पढ़ा हूं वही एग्जाम में आएगा और वैसा ही सिचुएशन बनेगा, वैसी ही प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है कि आप जैसा सोचोगे वैसे ही प्रकृति आपके लिए तैयार करेगी, तो आपके पास वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपने जो पढ़ा है वही आएगा और आप बहुत अच्छे नंबरों से आगे जाएंगे। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना रखती हूँ और जरूर होगा, आप ये अवश्य देखिए। और इसके लिए पर आपको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि मेडिटेशन एकाग्रता को बढ़ाता है। मेडिटेशन करने से हमारी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव होती है, इतनी ब्रॉड माइंड होते हैं कि इतना शार्प हमारा माइंड होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में बिल्कुल अक्षर से आता है। ये है राजयोग मेडिटेशन का कमाल, और एकाग्रता से प्राप्त होता है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले उनको इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, सक्सेस नहीं हो पाते थे, लेकिन जब से उन्होंने मेडिटेशन का कोर्स किया है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं और वो अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हैं। आप भी हो जाएंगे, ठीक है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि हर बार हम उमंग उत्साह से अपने आप को भर सकते हैं, और मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके हेल्प से हम अपने आप को नई तैयारी के लिए सक्षम बना सकते हैं। आज बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछा, सभी दोस्तों के जवाब लेने के लिए मैं सवाल भी नहीं पूछ पाया। कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लें, मगर मैं हमारे दोस्तों से माफी चाहता हूं जिनके सवाल आज मैं नहीं ले पाया हूं। कोशिश यही करूंगा कि आपके सवालों को मैं कल के प्रोग्राम में शुरुआती दौर में लेने की कोशिश करूंगा। तो आज आप सभी दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे सवाल हमारे साथ किए, और आप सभी दोस्तों की तरफ से मैं दीदी जी का धन्यवाद करता हूं कि दीदी आज हमारे साथ लाइव जुड़े और हमारे सभी दोस्तों के प्रश्नों के उत्तर देने की उन्होंने प्रयास किया, और जो उत्तर उन्होंने दिए वो आप सभी के लिए फायदेमंद रहेंगे, वो आपके लिए काम आएंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप सभी दोस्तों की तरफ से मैं दीदी जी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच दीदी, आप हमारे साथ जुड़े।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें चांस दिया ना, हमने भी कुछ बातें सुनाई तो सुन करके भी कई लोग सहमत हुए होंगे, उनके भी जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारी यही शुभकामना है। और आपका जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का वो भी अवश्य पूरा होगा, क्योंकि समय के अनुसार आप क्वेश्चन दे रहे हैं और लोगों के बीच इतनी अच्छी अच्छी बातों को लेके जा रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हर दिन हमारे साथ जो भी मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके साथ मेडिटेशन करने का मौका मिले, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 3-4 मिनट के लिए जितना समय हमारे पास है उतने में आप हमें मेडिटेशन कराएं, मेडिटेशन में आप हमें गाइड करें।
जी जो भी फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं चैनल से, वो अभी सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपने अपने स्थान पर बहुत अलर्ट हो करके स्पीड से भी करके बैठ जाएं और मन को दुनियावी बातों से, बाहर के वातावरण से अपने आप को हटा लें। थोड़ी देर के लिए आप अकेले हो जाएं, ये समझिए यहां कुछ भी नहीं, केवल मैं हूं, केवल मैं। और आराम से बैठ करके आप थोड़ा चिंतन कीजिए, राजयोग मेडिटेशन विचारों का योग है, संकल्पों का योग है, आंतरिक योग है, और इसके लिए आप अपना ध्यान बाह्य जगत से, बाह्य वस्तुओं से हटा देंगे और अनुभव करते चलेंगे। भ्रिकुटी के बीच इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चमकती हुई प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय आत्मा हूं। मैं आत्मा चमकती हुई मणि हूं। ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है। इस सृष्टि रंगमंच पर मैं शरीर धारण कर पार्ट प्ले करती हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित हूं। मुझ आत्मा में 7 गुण समाहित है। मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप धारण कर पार्ट बजाती हूं। पार्ट बजाते बजाते मैं भूल चुकी थी कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। अब मुझे ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप, इस पंच तत्व की दुनिया के पार परम धाम जहां का सुंदर लाल प्रकाश है, जहां चारों ओर शांति ही शांति है, उस परम धाम की मैं आत्मा रहने वाली हूं। मैं मन और बुद्धि से अपने घर को देख रही हूं। मेरा घर जो आत्माओं का घर है, इस घर में मेरे पिता परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है। जैसे मैं आत्मा ज्योति हूं, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, जिनको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, एक ओंकार कहते आए, वो यही ज्योति है जिस ज्योति स्वरूप परमात्मा की हम सब आत्माएं संतान हैं। परमात्मा पिता के पास मैं आत्मा पहुंच चुकी हूं। उस परम पिता परमात्मा से अनेक शक्तियां, अनेक गुण जैसे किरणों के रूप में मेरे ऊपर आ रही है। मैं आत्मा शक्ति का अनुभव कर रही हूं, गुणों का अनुभव कर रही हूं, और मैं आत्मा इन गुण और शक्तियों को लेकर इस सृष्टि रंगमंच की ओर आ रही हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच में अपने गुणों के साथ इस विनाशी शरीर में प्रवेश करती हूँ। भृकुटि के बीच मैं आत्मा बैठी हूँ। अनुभव करती हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। उस आत्मा के वाइब्रेशन चारों ओर वायुमंडल में प्रसारित हो रहे हैं। चारों ओर का वायुमंडल बहुत शांत हो रहा है। प्रकृति बहुत शांत हो रही है। मैं अनुभव करती हूँ मुझ आत्मा के सारे अवगुण समाप्त हो रहे हैं और मैं शांति की स्थिति में स्थित हूँ। मेरा स्वभाव शांत होता जा रहा है। मेरा हरेक के साथ प्रेम का संबंध बनता जा रहा है। मेरा व्यवहार सबके साथ मधुर हो रहा है। अब मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि मेरे साथ परमपिता परमात्मा सुप्रीम पावर की शक्तियां हैं। मैं अकेले नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। अब मुझे किसी बात का भय नहीं है, चिंता नहीं है, डर नहीं है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, सर्वशक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। मैं अनेक आत्माओं को ये शक्ति प्रदान कर रही हूँ। मेरे साथ जो भी आत्माएं हैं, वो अनुभव करते हैं कि हम सब सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है और हम सब एक पिता के बच्चे आपस में प्यार से रहने वाली आत्माएं हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।